एक अत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत के विचारों की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी कलम ने न सिर्फ इतिहास को आप कह सकते हैं झकझोरा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सोच की एक नई राह खोल दी।
जी,
एक ऐसी महिला जिन्होंने उस दौर में मतलब बराबरी और तर्क की आवाज उठाई
जी,
जब समाज महिलाओं को सिर्फ घर और भावनाओं तक यूं समझिए सीमित रखना चाहता था।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की। 1759 में जन्म हुआ और महज 38 साल की उम्र में 1797 में दुनिया छोड़ गईं।
बहुत कम उम्र में।
हाँ, लेकिन अपने छोटे से जीवन में उन्होंने विचारों की ऐसी मशाल जलाई जो देखिए आज भी रोशनी दे रही है।
सही।
उन्हें अक्सर आधुनिक नारीवाद की माँ या कह लीजिए नानी कहा जाता है, और ये खिताब काफी हद तक सही भी है।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी उनके क्रांतिकारी विचारों को समझें, उनकी जिंदगी के अहम मोड़ों को देखें
जी,
और उनकी विरासत के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करें जो आज भी हमारे समाज और हमारी सोच के लिए मायने रखते हैं।
बिल्कुल, देखते हैं 2 सदी पहले की बातें आज कैसे गूंजती हैं।
तो शुरुआत करते हैं उनके समय से, कैसा माहौल था उस वक्त?
देखिए, उनके समय को समझना बहुत जरूरी है। ये 18वीं सदी का उत्तरार्ध था, मतलब यूरोप में बड़ी उथल पुथल का दौर था। एक तरफ ज्ञानोदय का युग यानी एज ऑफ एनलाइटमेंट चल रहा था।
हाँ, एनलाइटमेंट
जी, जहां तर्क, विज्ञान, व्यक्तिवाद और हाँ मानव अधिकारों की बातें हवा में थीं। जॉन लॉक जैसे विचारक कह रहे थे कि हर इंसान के कुछ क्या कहते हैं प्राकृतिक अधिकार होते हैं।
लेकिन क्या इस हर इंसान में महिलाएं शामिल थी उस वक्त? शायद नहीं, है ना?
यही तो बड़ा सवाल था। और इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका और फ्रांस में क्रांतियां हो रही थीं।
हाँ, वो तो था ही।
स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे लग रहे थे। राजशाही और पुरानी व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे थे। माहौल एकदम कह सकते हैं गरम था।
तो इसी माहौल में वो पली बनी और उनके विचार पनपे।
बिल्कुल, और इसी बौद्धिक और राजनीतिक उबाल के बीच लंदन में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट उन रेडिकल यानी प्रगतिशील विचारकों के सर्कल में या दायरे में कह लीजिए शामिल हुई जो मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे।
अच्छा।
उन्होंने लॉक के विचारों को लिया और हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाई ये अधिकार सिर्फ पुरुषों के क्यों, महिलाओं के क्यों नहीं।
हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था
जी। और उन्होंने कैथरीन मैकुले जैसी गिनी चुनी महिला बुद्धिजीवियों से प्रेरणा भी ली जो उनसे पहले लिख रही थीं।
और ये भी दिलचस्प है कि वो सिर्फ उनसे सहमत होने वालों के साथ नहीं थीं, उन्होंने एडमंड बर्क जैसे बड़े रूढ़िवादी विचारक को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी।
हाँ, जब बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की।
बिल्कुल, और दूसरी तरफ वो थॉमस पेन और विलियम गॉडविन जैसे रेडिकल विचारकों के साथ खड़ी थी।
जी, गॉडविन से तो अब बाद में उन्होंने शादी भी की। मतलब वो उस दौर की जो बौद्धिक बहसें थीं उनके एकदम केंद्र में थीं।
और रूसो, उनके बारे में क्या? मैंने सुना है रूसो को भी उन्होंने चुनौती दी थी।
हाँ, ये सबसे दिलचस्प है शायद। देखिए, जॉन जाक रूसो शिक्षा पर तो बड़े प्रगतिशील विचार रखते थे।
हाँ, इमिल में?
जी, लेकिन सिर्फ लड़कों के लिए। लड़कियों की शिक्षा पर उनके विचार बेहद संकीर्ण थे।
अच्छा, किस तरह के विचार?
कि लड़कियों को बस पुरुषों को खुश करना और घर संभालना सीखना चाहिए। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने इस दोहरे मापदंड पर मतलब सीधा हमला किया। उन्होंने कहा, ये कैसा ज्ञानोदय है जो आधी आबादी को अंधेरे में रखना चाहता है।
सही सवाल। अच्छा, उनके अपने जीवन की शुरुआत कैसी थी? क्या वो आसान थी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। लंदन में जन्म हुआ, लेकिन पिता की गैर जिम्मेदाराना हरकतें थीं, शराब की लत थी और घर में हिंसा भी। माहौल काफी तनाव भरा रहता था।
ओहो, तो क्या इन शुरुआती अनुभवों ने उन्हें समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी, जो बेबसी थी, उसे और करीब से महसूस करने में मदद की?
लगता तो यही है, क्योंकि देखिए औपचारिक शिक्षा तो उस वक्त महिलाओं के लिए लगभग थी ही नहीं।
हाँ, वो तो है।
तो मैरी ज्यादातर स्वशिक्षित थीं, उन्होंने खुद पढ़ पढ़कर सीखा। उनकी एक दोस्त थी फैनी ब्लड, जिनके साथ उनकी अच्छी बौद्धिक साझेदारी थी, किताबें और हाँ कुछ चुनिंदा लोगों की संगत ही उनकी यूनिवर्सिटी थी कह सकते हैं।
और फिर उन्होंने वो काम किए जो उस जमाने में मतलब पढ़ी लिखी, इज्जतदार पर शायद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए ही उपलब्ध थे।
जी, जैसे किसी अमीर विधवा की साथी यानी कंपेनियन बन जाना, या अपनी बहन और दोस्त फैनी के साथ मिलकर एक छोटा सा स्कूल चलाना, या फिर आयरलैंड में एक अमीर घर में गवर्नेस की नौकरी करना। इन सब अनुभवों में उन्हें ये दिखाया कि महिलाओं के सामने रास्ते कितने सीमित हैं और कितने घुटन भरे हैं।
तो यहीं से बदलाव की सोच आई।
हाँ, यही एक बड़ा मोड़ आता है। इन सीमित विकल्पों से तंग आकर लगभग 1787 में उन्होंने फैसला किया कि वो एक पेशेवर लेखिका बनेंगी।
लेखिका
उस जमाने में
जी,
और इसी से अपनी रोजी रोटी कमाएंगी। आज हमें यह सामान्य लग सकता है, पर उस जमाने में एक महिला के लिए ये एक बहुत बड़ा, मतलब लगभग असंभव सा लगने वाला कदम था।
हाँ, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी,
दोनों तरह से। आर्थिक असुरक्षा तो थी ही, सामाजिक रूप से भी ये बहुत रैडिकल माना जाता था।
फिर लंदन आना उनके लिए फायदेमंद रहा।
हाँ, लंदन आकर प्रगतिशील प्रकाशक थे जोसेफ जॉनसन, उनके लिए काम करना उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक साबित हुआ।
अच्छा।
जॉनसन का जो दफ्तर था वो उस समय के रेडिकल विचारों का एक तरह से अड्डा था। यहाँ उनकी मुलाकातें कई बड़े लेखकों, कलाकारों और विचारकों से हुई। ये उनके लिए एक बौद्धिक घर जैसा बन गया।
और उनका पेरिस जाना वो भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।
हाँ, बहुत अहम था। वो 1792 से 1795 के बीच पेरिस में रहीं। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को अपनी आंखों से देखा, उसकी उम्मीदें भी देखीं और उसका खौफनाक चेहरा भी।
लेकिन निजी जीवन में भी काफी उथल पुथल रही शायद वहां।
हाँ, ये दौर निजी तौर पर भी बहुत तूफानी रहा। अमेरिकी व्यापारी गिल्बर्ट इमले से प्यार हुआ, बिना शादी के बेटी हुई फैनी। फिर इमले ने उन्हें छोड़ दिया और इस सदमे में उन्होंने दो बार आत्महत्या की कोशिश भी की। ये सब उनके जीवन के बेहद मुश्किल साल थे।
जाहिर है, इन अनुभवों ने उनके लेखन को और गहराई दी होगी, उसे शायद ज्यादा मानवीय बनाया होगा।
लगता तो यही है। अगर उनके करियर को देखें तो शायद तीन हिस्से दिखते हैं। एक शुरुआती दौर जो शिक्षा पर केंद्रित था।
हाँ।
फिर लंदन का वो क्रांतिकारी दौर जब सबसे धारदार राजनीतिक लेखन आया, और फिर आखिरी दौर जिसमें वो यात्रा वृत्तांत और हाँ, गॉडविन के साथ उनका रिश्ता और लेखन शामिल है।
सही कहा। और विलियम गॉडविन से उनकी शादी, ये भी तो अपने आप में कहानी है। दोनों विवाह संस्था के आलोचक थे, फिर भी शादी की।
हाँ, 1797 में, शायद इसलिए ताकि उनके होने वाले बच्चे को समाज में नाजायज न समझा जाए। ये एक बौद्धिक बराबरी का रिश्ता था, पर दुखद रूप से बहुत छोटा रहा।
क्यों, क्या हुआ?
अपनी दूसरी बेटी मैरी को जन्म देने के सिर्फ 11 दिन बाद ही इन्फेक्शन से उनकी मौत हो गई।
ओहो, सिर्फ 11 दिन, और वो बेटी मैरी शेली बनी फ्रैंकस्टन की लेखिका।
जी हाँ, वही मैरी शेली। माँ बेटी को जान ही नहीं पाई। वॉलस्टोनक्राफ्ट की उम्र उस वक्त सिर्फ 38 साल थी।
वाकई एक असाधारण जीवन का बहुत दुखद अंत। चलिए अब उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं और उनमें छिपे विचारों पर ध्यान देते हैं। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ये 1790 में आई।
जी,
ये तो सीधे सीधे एडमंड बर्क को जवाब था, है ना?
बिल्कुल। बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति की तीखी आलोचना करते हुए किताब लिखी थी, और वॉलस्टोनक्राफ्ट ने लगभग तुरंत उसका जवाब दिया।
अच्छा।
हाँ, इसमें उन्होंने गणतांत्रिक मूल्यों का बचाव किया, खानदानी विशेष अधिकारों पर हमला बोला और कहा कि समाज का आधार तर्क होना चाहिए, न कि सिर्फ परंपरा। ये दिखाता है कि वो राजनीतिक बहसों में कितनी निडर थीं।
लेकिन वो किताब जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया, वो है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, 1792 वाली।
जी हाँ, बिल्कुल। इसे अक्सर नारीवादी आंदोलन का एक तरह से घोषणा पत्र कहा जाता है।
ऐसा क्या खास था इसमें उस समय के हिसाब से?
खास ये था कि उन्होंने पहली बार इतने व्यवस्थित और तार्किक ढंग से ये कहा कि भाई, महिलाएं पुरुषों से स्वाभाविक रूप से कमतर नहीं है।
अच्छा।
जिसे समाज औरतों का स्वभाव कहता है कि वो भावुक होती हैं, कमजोर होती हैं, तर्क नहीं कर पाती, वो असल में उनकी शिक्षा की कमी और समाज द्वारा उन पर थोपी गई भूमिकाओं का नतीजा है।
मतलब ये प्रकृति नहीं, ये समाज की देन है।
बिल्कुल। उन्होंने कहा, लड़कियों को भी लड़कों जैसी शिक्षा दो, फिर देखो। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सह शिक्षा यानी को एजुकेशन की वकालत की।
ये तो उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी बात रही होगी।
हाँ, बहुत ज्यादा। यानी वो कह रही थी कि महिलाओं को सिर्फ अच्छी पत्नी या माँ बनने के लिए नहीं, बल्कि एक तर्कशील इंसान और एक नागरिक बनने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए।
उनकी एक और किताब का जिक्र आता है, स्कैंडिनेविया यात्रा पर आधारित।
हाँ, लेटर्स रिटन ड्यूरिंग अ शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क, 1796 में।
ये कैसी किताब थी?
ये काफी अलग है। ये उनकी स्कैंडिनेविया यात्रा का वर्णन है, लेकिन सिर्फ यात्रा वृत्तांत नहीं है, इसमें समाज की आलोचना भी है, प्रकृति का सुंदर वर्णन है और उनके अपने निजी अनुभव और भावनाएं भी खुलकर सामने आती हैं। ये किताब उस समय काफी लोकप्रिय भी हुई थी
और उनकी शुरुआती किताब थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स और वो अधूरा उपन्यास मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन।
जी, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स 1787 में आई थी, जिसमें उनके शुरुआती विचार मिलते हैं लड़कियों की शिक्षा पर। और मारिया, वो तो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, अधूरा रह गया था।
अच्छा,
वो एक तरह से राइट्स ऑफ वुमेन का ही भावनात्मक और काल्पनिक विस्तार है। उसमें उन्होंने कहानी के जरिए दिखाया कि कैसे कानून और समाज मिलकर महिलाओं का शोषण करते हैं, खासकर विवाह और संपत्ति के मामलों में।
तो अगर हम उनके मुख्य विचारों को समेटना चाहें, वो कौन से बड़े विचार थे जिन्होंने नारीवाद की नींव डाली?
देखिए, सबसे पहला और बुनियादी योगदान तो यही था कि ज्ञानोदय के जो बड़े बड़े दावे थे, तर्क, अधिकार, स्वतंत्रता, उन्होंने कहा ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, इन्हें महिलाओं पर भी लागू करना होगा।
और उनका वो तर्क संवेदना पर तर्क की प्रधानता, रीजन ओवर सेंसिबिलिटी, ये थोड़ा समझाएंगे?
हाँ, ये समझना जरूरी है। उस जमाने में माना जाता था कि महिलाएं तो होती ही भावुक हैं, उनकी पहचान ही उनकी संवेदनशीलता यानी सेंसिबिलिटी से है।
हाँ, मतलब इमोशनल ज्यादा होती हैं।
जी, वॉलस्टोनक्राफ्ट ने कहा कि ये सोच खतरनाक है, ये महिलाओं को कमजोर, निर्भर और अतार्किक बनाती है। उन्होंने जोर दिया कि तर्क ही इंसान का सबसे बड़ा गुण है और महिलाओं को भी अपनी भावनाओं पर काबू पाकर तर्क से सोचना और जीना सीखना चाहिए।
तो तर्क उन्हें मजबूत और आजाद बनाएगा।
बिल्कुल, यही उनका मानना था। और तर्क के साथ जुड़ा है शिक्षा का विचार, शिक्षा से मुक्ति, एजुकेशन इज लिबरेशन।
हाँ, इस पे तो उन्होंने बहुत जोर दिया।
हाँ, उनका मानना था कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, और वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अच्छी पत्नियां या माएं बने,
बल्कि
इसलिए कि वो बेहतर इंसान बने, आत्मनिर्भर बने और समाज में बराबरी का योगदान दे सकें। शिक्षित महिलाएं अपने पतियों की बौद्धिक साथी बन सकती हैं, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकती हैं और इस तरह पूरे समाज को बेहतर बना सकती हैं।
और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने पहले भी कही, उन्होंने घर की चारदीवारी के अंदर के शोषण को भी राजनीतिक मुद्दा बनाया।
हाँ, जिसे बाद में व्यक्तिगत ही राजनीतिक है यानी द पर्सनल इज पॉलिटिकल कहा गया।
ये कैसे?
उन्होंने बड़ी हिम्मत से कहा कि घर में पति का पत्नी पर जुल्म करना, जिसे वो पतियों का दैवीय अधिकार कहती हैं मजाक में,
अच्छा,
वो ठीक वैसा ही है जैसा राजा का अपनी प्रजा पर जुल्म करना, यानी राजाओं का दैवीय अधिकार। उन्होंने कहा कि अगर समाज को सुधारना है तो पहले परिवार के अंदर की इस तानाशाही को खत्म करना होगा।
वाह, ये तो बहुत गहरी बात थी उस समय के लिए।
जी हाँ।
तो कुल मिलाकर उनका जोर महिलाओं की तार्किक समानता, रैशनल इक्वालिटी पर था, और ये कहना कि लिंग भेद समाज बनाता है, प्रकृति नहीं।
हाँ, यही उनका मूल तर्क था, जिसे शायद एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, यानी माहौल और परिस्थितियां इंसान को ढालती हैं। ये रूसो जैसे विचारकों के एकदम खिलाफ था। रूसो मानते थे कि औरतें स्वभाव से ही अलग और घरेलू कामों के लिए बनी हैं। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने कहा नहीं, उन्हें ऐसा बनाया गया है, वो ऐसी है नहीं, उन्हें मौका तो दीजिए।
लेकिन इतनी क्रांतिकारी बातों का स्वागत कैसे हुआ होगा उस समाज में? उनकी विरासत की कहानी भी तो बड़ी उतार चढ़ाव वाली रही है।
हाँ, वो भी कम नाटकीय नहीं रही। उनकी मौत के बाद, जैसा हमने कहा, उनके पति विलियम गॉडविन ने उनकी जिंदगी पर एक संस्मरण लिखा।
हाँ, मेमोयर।
जी, वो शायद पूरी ईमानदारी से उनकी कहानी बताना चाहते थे, श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन उसमें उन्होंने मैरी के प्रेम संबंधों, बिन ब्याही माँ बनने, आत्महत्या के प्रयासों जैसी बातों का भी खुलकर जिक्र कर दिया।
और उस समय के रूढ़िवादी समाज ने इसे हाथों हाथ लिया होगा उनके विचारों को खारिज करने के लिए।
बिल्कुल, आलोचकों को तो जैसे मसाला मिल गया। उन्होंने कहा देखो, ये है नाजाद ख्यालों का नतीजा, अनैतिक जीवन।
हाँ।
और इस कांड के कारण वॉलस्टोनक्राफ्ट का काम लगभग 100 साल के लिए आप कह सकते हैं हाशिए पर चला गया। लोग उनके विचारों को उनके निजी जीवन के चश्मे से देखने लगे और उन्हें खतरनाक मानने लगे।
तो फिर उन्हें दोबारा कैसे खोजा गया, ये गुमनामी कैसे टूटी?
करीब एक सदी बाद, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में, जब महिला मताधिकार आंदोलन यानी सफ्रेज मूवमेंट जोर पकड़ रहा था।
अच्छा, सफ्रेजेट्स ने?
हाँ, उन आंदोलन की कार्यकर्ताओं ने वॉलस्टोनक्राफ्ट के लेखन में अपने संघर्षों की जड़ें और प्रेरणा पाई। उन्होंने उन्हें फिर से पढ़ा और लोगों के सामने लाए।
और फिर
1960-70 के दशक में नारीवाद की दूसरी लहर आई, सेकेंड वेव फेमिनिज्म।
जी।
उसने वॉलस्टोनक्राफ्ट को पश्चिमी विचारकों में एक प्रमुख और संस्थापक हस्ती के रूप में मजबूती से स्थापित किया।
और आज आज उनकी क्या प्रासंगिकता है, 200 साल से ज्यादा हो गए हैं।
देखिए आज भी उनकी बातें सीधी चोट करती हैं, शैक्षिक समानता की बात हो, आर्थिक आजादी की बात हो, लैंगिक रूढ़ियां यानी जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की उनकी दलीलें हो,
हाँ।
जिस सब आज भी दुनिया भर में लैंगिक समानता, राजनीति और मानवाधिकारों पर होने वाली बहसों के केंद्र में है, उनके सवाल आज भी जिंदा हैं, शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक हैं।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं जो उनके विचारों की धार दिखाते हैं। एक जो मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं चाहती कि महिलाओं का पुरुषों पर अधिकार हो बल्कि स्वयं पर हो।
हाँ, कितनी सीधी और गहरी बात है। मतलब सत्ता का खेल नहीं, आत्मनियंत्रण चाहिए, स्वायत्तता चाहिए।
बिल्कुल। और एक और, बचपन से सिखाया जाता है कि सुंदरता ही स्त्री का राजदंड है, मन शरीर के अनुरूप ढल जाता है और अपने सुनहरे पिंजरे के चारों ओर घूमते हुए केवल अपने कारावास को सजाने की कोशिश करता है।
क्या बात है, ये दिखाता है कि कैसे समाज महिलाओं को बुद्धि से ज्यादा बाहरी रूप रंग में उलझा कर रखता है, एक तरह की हाँ मानसिक गुलामी।
और वो तुलना तो कमाल की है, पतियों का दैवीय अधिकार राजाओं के दैवीय अधिकार की तरह, उम्मीद है इस प्रबुद्ध युग में बिना किसी खतरे से चुनाव लड़ा जा सकता है।
हाँ, घर के अंदर की तानाशाही और राज्य की तानाशाही को एक ही पलड़े पे रख दिया, ये उनकी निडरता दिखाता है।
उनके पत्रों से एक और विचार मिलता है, दुनिया में न्याय की कमी नहीं, दान की नहीं।
सही, मतलब महिलाओं के अधिकार भीख नहीं, हक है, न्याय का मामला है ये।
और एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाला वाक्य शायद उनके अपने संघर्षों से निकला होगा, शुरुआत हमेशा आज ही होती है। Never too late.
हाँ।
उनके जीवन से जुड़े कुछ और दिलचस्प पहलू भी हैं जिन पर हमने थोड़ी बात की, जैसे उनकी बेटी मैरी शेली।
जी, फ्रैंकस्टीन की लेखिका।
माँ अपनी बेटी की प्रतिभा को देख ही नहीं पाई, और वो किस्सा जब 1795 में अपने बेवफा प्रेमी गिलबर्ट इमली के कहने पर, मतलब उसके कुछ बिजनेस के काम निपटाने और एक चोरी हुआ चांदी का जहाज खोजने के लिए,
हाँ,
वो अपनी नन्ही सी बेटी और एक नौकरानी के साथ अकेले स्कैंडिनेविया की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी।
सोचिए जरा उस जमाने में, ये उनके अदम्य साहस को दिखाता है, असाधारण हिम्मत थी उनमें।
और उन्होंने अपनी बहन एलिजा को उसके हिंसक पति से बचाने में भी मदद की थी, उसे घर से भगाने में, ये भी उस समय के लिहाज से एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध माना जाता था।
हाँ, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, जो सही लगा वो किया।
और जैसा हमने पहले कहा, विलियम गॉडविन से शादी का फैसला जबकि दोनों विवाह के खिलाफ थे।
जी, ये भी दिखाता है कि वो आदर्शवादी होने के साथ साथ यथार्थवादी भी थी, वो अपने बच्चे को सामाजिक तिरस्कार से बचाना चाहती थी।
हालांकि आज हम उन्हें एक नायक की तरह देखते हैं, पर उनकी आलोचनाएं भी तो हुई होंगी, उनके समय में भी और बाद में भी।
हाँ बिल्कुल हुई, समकालीन आलोचकों ने तो उन्हें समाज के लिए खतरा ही माना।
क्यों?
क्योंकि वो स्थापित नियमों, पारिवारिक ढांचे, लिंग आधारित भूमिकाओं, मतलब सबको चुनौती दे रही थी, और उनके निजी जीवन को तो हथियार की तरह इस्तेमाल किया ही गया उनके विचारों को बदनाम करने के लिए।
और क्या आज के दौर में भी उन पर कोई सवाल उठाए जाते हैं, आधुनिक आलोचना?
हाँ, कुछ आधुनिक आलोचक कहते हैं कि उनका ध्यान शायद ज्यादातर मध्यम वर्गीय महिलाओं की शिक्षा और स्थिति पर था।
अच्छा।
और उन्होंने मजदूर वर्ग या गरीब महिलाओं की समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं दिया। ये एक बहस का मुद्दा है जिस पर विद्वान बात करते हैं।
और मातृत्व पर उनका जोर?
हाँ, मातृत्व पर उनका जोर भी कुछ बात के नारीवादियों को थोड़ा सीमित करने वाला लगा। हालांकि ये तर्क देना कि पढ़ी लिखी औरतें बेहतर माँ बनेंगी, उस समय शायद रणनीतिक रूप से जरूरी रहा होगा। और ये बहस भी चलती है कि वो कितनी क्रांतिकारी थीं और कितनी सिर्फ उदारवादी दायरे में सुधार कर रही थीं। रूसो के साथ उनका वो जटिल रिश्ता, प्रेरणा भी लेना और कड़ी आलोचना भी करना, ये भी हमेशा दिलचस्प रहा है।
लेकिन इन सब बहसों के बावजूद उनका कद तो बहुत ऊंचा है।
हाँ बिल्कुल, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का कद कम नहीं होता। उनकी कहानी और उनके विचार हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने तर्क और शिक्षा को व्यक्तिगत और सामाजिक आजादी का रास्ता बताया। उन्होंने महिलाओं से कहा कि भावनाओं के कैदी मत बनो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो।
आज की दुनिया को देखें, जहां जानकारी का तो सैलाब है, सोशल मीडिया का भारी दबाव है, लैंगिक रूढ़ियां नए रूपों में सामने आ रही हैं। ऐसे में वॉलस्टोनक्राफ्ट का ये कहना कि तर्क और शिक्षा हमें आजाद कर सकते हैं, कितना मायने रखता है?
यही तो सवाल है, क्या आज भी सच्ची शिक्षा, आलोचनात्मक सोच हमें, खासकर महिलाओं को, इन नए किस्म के दबावों से, इन डिजिटल पिंजरों से निकलने में मदद कर सकती है?
शायद यही सवाल मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट आज भी हमारे लिए छोड़ गई हैं, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।